डेनियल की पुस्तक क्रमांक 185।
देवत्व का साकार रूप, पतरस की गहन स्वीकारोक्ति और उसके निहितार्थ।
जब पतरस ने मसीह के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि शिष्य कहते हैं कि मसीह कौन है, तब उसने घोषित किया कि यीशु अभिषिक्त है, अर्थात मसीहा, मसीहा। उसने यह भी कहा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है।
जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के क्षेत्र में आया तो उसने अपने चेलों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूं? उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। तब यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, धन्य है तू शमौन बरयोना, क्योंकि मांस और रक्त ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। मत्ती 16:13-19।
पतरस के माध्यम से पवित्र आत्मा ने वह आवश्यक सत्य प्रस्तुत किया ताकि 144,000 उसे समझ सकें। ये उसने पानयम में किया, जो कैसरिया फिलिप्पी था। पानयम अजगर की उपासना का सबसे पवित्र मंदिर स्थल है, क्योंकि यूनान संसार का प्रतिनिधित्व करता है, और अंतिम दिनों में संसार संयुक्त राष्ट्र ही है जो अजगर का पृथ्वी पर प्रतिनिधि है। नरक के फाटक यूनानी बकरा देवता पान के मंदिर का एक नाम है। मंदिर एक गुफा के सामने बनाया गया था, जिसमें पानयम का स्रोत था। पानयम का स्रोत यर्दन नदी को जल देता था, जो मसीह का प्रतीक है। जॉर्डन नाम का अर्थ उतरने वाला है, और जॉर्डन नदी अपना प्रवाह उत्तरी इसराइल के पर्वतीय क्षेत्र में शुरू करती है, जिसका मुख्य स्रोत हर्मोन पर्वत के झरने हैं। हर्मोन पर्वत हर्मोन श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जहां नर्क के द्वार कहलाने वाला एक झरना स्थित है। हर्मोन का अर्थ पवित्र और जॉर्डन का अर्थ उतरना होता है। जॉर्डन नदी हर्मोन पर्वत के ऊंचे इलाकों से बहती है और जॉर्डन रिफ्ट वैली से नीचे उतरती हुई अंततः मृत सागर तक पहुंचती है, जो पृथ्वी की सतह का सबसे निचला बिंदु है। यर्द नदी को पोषण देने वाले वे जल, जिनका उद्गम पैन के मंदिर में होता है और जो अंततः पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचते हैं, उस अवरोह का प्रतीक है जो परमेश्वर के पुत्र ने किया, जब वे सर्वोच्च पवित्र पर्वत छोड़कर इस संसार के सबसे नीचे स्थित मृत सागर तक उतर आए। स्वर्ग से क्रूस की मृत्यु तक मसीह का अवरोह यह भी दर्शाता है कि उन्होंने पतित मनुष्य की देह धारण किया, क्योंकि स्वर्ग से क्रूस तक की उनकी यात्रा को उन जलों ने पोषित किया जिनका उद्गम नरक के द्वार से हुआ था। मृत सागर केवल पृथ्वी का सबसे निचला स्थान ही नहीं है, बल्कि यहाँ का पानी पृथ्वी पर सबसे खारा है, जो महासागर से 9 गुना अधिक खारा है। क्रूस पर मसीह की मृत्यु, जिसका प्रतीक मृत सागर है, वही घटना है जिसमें उन्होंने बहुतों के साथ अपनी वाचा की पुष्टि की।
और तेरी अनबलि की हर भेंट में तू नमक डालना, और अपने परमेश्वर की वाचा का नमक तेरी अनबलि से कभी घटने न देना। अपनी सब भेंटों के साथ तू नमक चढ़ाएगा। लावीय व्यवस्था 2:3।
हर्मोन पर्वत के स्रोतों से निकलकर यर्दन नदी गलील सागर से होकर गुजरती है, जिसे झील टाइबेरियस और झील किन्नेरत भी कहा जाता है। गलील का अर्थ काज या मोड़ होता है। टाइबेरियस अगस्टस सीजर के बाद आने वाले रोमी शासक का नाम है, और झील के आकार के कारण इसे किन्नेरत कहा जाता है, जिसका अर्थ वीणा या लायर है। मानव जाति के लिए मोड़ वो था जब टाइबेरियस सीजर का शासन था और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, और स्वर्ग में हर वीणा मौन हो गई। नरक के फाटक, जो यूनानी देवता पैन का मंदिर है, के संदर्भ में यर्दन नदी का भौगोलिक साक्ष्य उस गवाही की ओर संकेत करता है जिसे पतरस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से घोषित किया। मसीह का अवतार दिव्यता और मानवता का वो संयोग था जो तब घटित हुआ जब परमेश्वर के दैवी पुत्र ने अपने ऊपर मानवीय देह धारण की। इस प्रकार उसने दिव्यता को मानवता के साथ संयुक्त किया, जैसा कि पांग के स्रोत से निकलने वाले जल द्वारा यर्दन नदी को पोषित किए जाने में निरूपित है। यर्दन नदी को पोषण देने वाली वस्तुएं वे ओस, वर्षा और हिम थीं, जो हर्मोन के पर्वतों पर गिरती थीं। हर्मोन उस पवित्र पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है जो ऊपर की यरूशलेम है।
दाऊद का उन्नति का गीत। देखो, भाइयों का एक साथ मिलकर रहना क्या ही अच्छा और मनोहर है। ये उस बहुमूल्य तेल के समान है जो सिर पर डाला गया, जो दाढ़ी तक अर्थात हारून की दाढ़ी तक बहता हुआ उसके वस्त्रों के कगार तक उतर गया, जैसे हर्मोन की ओस और जैसी ओस सियोन के पर्वतों पर उतरती है, क्योंकि वहीं यहोवा ने आशीर्वाद ठहराया है, अर्थात सदा का जीवन। भजन संहिता 37:1-3।
वो बहुमूल्य सूत अंगित तेल जो हारून की दाढ़ी पर बहा, वही तेल था जिसका उपयोग तब किया गया जब वो और उसके पुत्र परमेश्वर के याजक के रूप में अभिषिक्त किए गए।
और तू वेदी पर जो रक्त है उसमें से और अभिषेक के तेल में से ले और उसे हारून पर और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों पर और उसके संग उसके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़क। तब वो उसके वस्त्र, उसके पुत्र और उसके संग उसके पुत्रों के वस्त्र पवित्र ठहरेंगे। निर्गमन 29:21।
पतरस ने सभी शिष्यों का अंगीकार व्यक्त किया और ऐसा करते हुए उसने उन 144,000 का भी अंगीकार व्यक्त किया जिन्हें एकीकृत याजकत्व के रूप में अभिषिक्त किया जाना है, जो ध्वज के समान ऊंचा उठाया जाएगा। तेल जिसने हारून का अभिषेक किया वो हर्मोन पर्वत की ओस के समान भी था और सियोन के पर्वतों की ओस के समान भी। तेल और ओस वो संदेश है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
हे आकाश, कान लगाकर सुन और मैं बोलूंगा, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह के वचनों को सुन। मेरी शिक्षा वर्षा की तरह बरसेगी, मेरी वाणी ओस की तरह टपकेगी, जैसे कोमल पौधे पर हल्की फुहार और जैसे घास पर बौछारें, क्योंकि मैं प्रभु के नाम का प्रचार करूंगा। तुम हमारे परमेश्वर को महान ठहराओ। व्यवस्था विवरण 32:1-3।
ओस वही उपदेश है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरता है और वही अभिषेक का तेल है जो 144,000 को एक करता है, जो अंतिम दिनों में परमेश्वर के याजक है। उपदेश वर्षा की तरह बरसता है और प्रकाशित होने के कारण ओस की तरह टपकता है। वो इसलिए प्रकाशित होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी एकीकृत याजकत्व के माध्यम से, जो वो पताका है जो आधी रात की पुकार और ऊंची पुकार के संदेशों की घोषणा करता है, उसके मुख के वचनों पर कान लगाएं और उन्हें सुने।
पर्वतों पर उसके पांव कितने सुंदर हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति का प्रचार करता है, जो कल्याण का शुभ समाचार लाता है, जो उद्धार का प्रचार करता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तेरे पहरेदार अपनी आवाज ऊंची करेंगे, वे एक स्वर होकर गाएंगे, क्योंकि वे आमने सामने देखेंगे जब यहोवा सियोन को फिर लौटा लाएगा। हे यरूशलेम के उजाड़ स्थानों, आनंद से फूट पड़ो, मिलकर गाओ, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सब जातियों के देखते अपनी पवित्र भुजा उघाड़ दी है और पृथ्वी के सब छोर हमारे परमेश्वर का उद्धार देखेंगे। यशाया 5:10।
अंतिम दिनों के प्रहरी, जिनका प्रतिनिधित्व पतरस करता है, उद्धार और शांति का प्रचार करते हैं और वे एकजुट होंगे, क्योंकि वे आंखों से आंखें मिलाकर देखेंगे। ये तब होता है जब द लॉर्ड ब्रिंग्स अगेन ज़ायोन, हिब्रू शब्द जिसका अनुवाद ब्रिंग अगेन किया गया है, का अर्थ रिवर्स होता है। जब प्रभु सियोन को पलट देते हैं तो इसका अर्थ है कि सियोन बंधुआई में था, जिसे तितर बितर होना दर्शाता है, और जब बंधुआई समाप्त हो जाती है तब ये पलट जाता है।
प्रभु यों कहता है, बाबिल में 70 वर्ष पूरे हो जाने के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें इस स्थान पर लौटा लाने के द्वारा तुम्हारे विषय में अपने पुतम वचन को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो विचार करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, प्रभु की ये वाणी है, वे शांति के विचार है न कि हानि के, ताकि तुम्हें वो अंत दूं जिसकी तुम आशा रखते हो। तब तुम मुझे पुकारोगे
और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, प्रभु की ये वाणी है, और मैं तुम्हारे निर्वासन को समाप्त कर दूंगा और जिन सब जातियों में और उन सब स्थानों से जहां जहां मैंने तुम्हें तितर बितर किया है, प्रभु की ये वाणी है, मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और तुम्हें फिर उस स्थान पर लौटा लाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ बनाकर ले जाया था। यिर्मयाह 29:10-14।
सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों के बारे में बोल रहे हैं और अंतिम दिनों में उसकी प्रजा ऐसी बंधुवाई में है जिसे पलटा जाना है ताकि भविष्यवाणी की गवाही पूरी हो।
यहोवा की ओर से जो वचन यिर्मयाह के पास आया वो ये है,
इस प्रकार इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जो सब वचन मैंने तुझ से कहे हैं उन्हें एक पुस्तक में लिख ले, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं, यहोवा की वाणी है, कि मैं अपनी प्रजा इज़राइल और यहूदा की बंधुआई को लौटा लाऊंगा, यहोवा की वाणी है, और मैं उन्हें उस देश में लौटाऊंगा जो मैंने उनके पितरों को दिया था, और वे उसे अधिकार में लेंगे। यिर्मयाह 30:1-3।
3.5 दिन की निद्रा के बाद जैसे लाज़र 4 दिन सोया रहा और दानियल ने 21 दिन शोक किया, मीकाएल इन दो गवाहों को जो उसके अंतिम दिनों के लोग हैं पुनर्जीवित करता है, उन्हें एक करता है और एक ऐसे संदेश के द्वारा उनका अभिषेक भी करता है जो सारे विश्व में प्रकाशित किया जाता है। वो संदेश हेरमोन पर्वत पवित्र पर्वत की ओस है जो पैन के सोते को जल देती है, जो आगे चलकर यर्दन नदी को जल देता है। उस संदेश से संपन्न होने वाला अभिषेक यीशु के उस अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है जिसने उसके मसीह बन जाने को चिह्नित किया, जिसकी पहचान पतरस ने की। जब पतरस ने मसीही को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया तो उसने मसीही को परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दोनों के रूप में प्रस्तुत किया, जैसा कि यर्दन नदी को पोषित करने वाले नरक के फाटक के जल द्वारा दर्शाया गया था। पतरस का अंगीकार पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ था और वही सत्य कि यीशु मसीह अर्थात अभिषिक्त है और वे परमेश्वर भी हैं और मनुष्य भी, जिसे यीशु ने उस सत्य के रूप में चिन्हित किया जिस पर परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा के विरुद्ध होने वाला संघर्ष केंद्रित होगा और जिनके विषय में मसीही ने प्रतिज्ञा की थी कि वे विजयी होंगे, क्योंकि नरक के फाटक इस सत्य के विरुद्ध प्रबल न होंगे। सत्य ये है कि 11 सितंबर 2001 को जैसे यीशु अपने बपतिस्मा के समय अभिषिक्त हुए थे, वैसे ही 1,44,000 की मुहरबंदी आरंभ हुई और उस इतिहास में एक निराशा होने वाली थी जो उसके अंतकाल के लोगों को मार डालेगी जब तक कि वो उन्हें पुनर्जीवित न करे और उनकी बंधुआई को पलट न दे। पुनरुत्थान की प्रक्रिया में उसके लोगों को एक पराक्रमी सेना में एकीकृत करना सम्मिलित है जिसे एक ध्वज के समान ऊंचा उठाया जाता है। सड़कों में मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित सब निर्करने, शुद्ध करने, एकीकृत करने और ऊंचा उठाने का कार्य दानियेल अध्याय 11 के पद 10 से 15 में तथा बाइबल के अन्य अंशों में भी चित्रित किया गया है, परंतु पद 13 से 15 में मसीह एक बार फिर अपने चेलों को कैसरिया फिलिप्पी अर्थात पानीयम में ले आया है और वही परमेश्वर की मुहर अनंत काल के लिए अंकित की जाती है। केवल तभी जब हम इन तथ्यों की गहनता को समझते हैं हम कैसरिया फिलिप्पी की गवाही में स्थित सत्य के प्रकाशनों को पहचान सकते हैं। मत्ती के 16वें अध्याय के 18 पद में शमौन बरयोना का नाम बदलकर पतरस रखा जाता है, जो जैसा कि हाल के एक लेख में पहले उल्लेख किया गया है 1,44,000 का प्रतीक है। उस पद में स्थापित गणितीय प्रकाशन यीशु को अद्भुत गणनाकर्ता के रूप में महिमान्वित करता है, क्योंकि न केवल पतरस को 1,44,000 का प्रतिनिधित्व करने वाला समझा जा सकता है बल्कि मत्ती 16:18 भी फाय का गणितीय प्रतीक है। हम फी से संबंधित गणित पर विचार करने से पहले ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि फी फिलिपी शब्द का एक अंग है जो फाइनियम नगर के दो नामों में से दूसरा है। पद 18 ये दर्शाता है कि यीशु ने पीटर से हिब्रानी में कहा जिसे यूनानी में लिपिबद्ध किया गया और बाद में अंग्रेजी में अनुदित किया गया। ये 3 चरण उसके वचन पर मसीह के संप्रभुत्व को दर्शाते हैं। जब उस शब्द को क्रमांकित स्थितियों के गुणन की गणितीय प्रणाली के साथ विचार किया जाता है, तब ये निर्धारित करता है कि पीटर नाम 144,000 के समतुल्य है और इस प्रकार यीशु को अद्भुत गणनाकर्ता के रूप में रेखांकित करता है। उसी पद में जहां यीशु ये घोषित करते हैं कि वो अपनी कलीसिया का निर्माण करेगा, अद्भुत गणनाकर्ता ने अनुवाद प्रक्रिया को इस प्रकार नियंत्रित किया कि अध्याय 16 के 18वें पद में प्रतिपादित सत्य फी के गणितीय प्रतीक का प्रतिनिधित्व करे।
और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती 7:7।
उसकी कलीसिया केवल इस सिद्धांत पर ही स्थापित नहीं है कि यीशु मसीह है और कि वो परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि इस तथ्य पर भी कि वही वचन है और वचन ने सब वस्तुओं की सृष्टि की है तथा सब पर प्रभुत्व रखता है, जिनमें गणित, व्याकरण और मनुष्यों के कार्य भी सम्मिलित है।
उसी में हमने भी विरासत प्राप्त की है, क्योंकि हम उसके उद्देश्य के अनुसार पूर्व नियत किए गए हैं, जो अपनी ही इच्छा की सम्मति के अनुसार सब कुछ करता है। इफिशियन 1:11
फाय, जिसे अक्सर ग्रीक अक्षर फी फाय द्वारा दर्शाया जाता है, एक गणितीय स्थिरांक है जो लगभग 1.618033988749895 के बराबर होता है। इस संख्या को स्वर्ण अनुपात या देवीय अनुपात के रूप में जाना जाता है। ये एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इसे किसी सरल भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और इसका दशमलव विस्तार बिना दोहराव के अनंत तक चलता है। स्वर्ण अनुपात के अनेक उल्लेखनीय गुणधर्म हैं, और ये गणित, कला, वास्तुकला, प्रकृति तथा अन्य क्षेत्रों के विभिन्न संदर्भों में दृष्टिगोचर होता है। ये अक्सर आयतों, पंचभू, जों और द्वादश फलकों जैसी ज्यामितीय आकृतियों में पाया जाता है, जहां लंबी भू जा का छोटी भुजा से अनुपात फाई के बराबर होता है।
कला और वास्तुकला में स्वर्ण अनुपात को सौंदर्यपूर्ण अनुपात उत्पन्न करने वाला माना जाता है। इसे इतिहास भर में कलाकारों और वास्तुकारों द्वारा प्राचीन सभ्यताओं से लेकर पुनर्जागरण काल और आगे तक रचनाएं, भवन और कलाकृतियां डिजाइन करने के लिए उपयोग किया गया है। गणित में स्वर्ण अनुपात विभिन्न गणितीय समीकरणों और श्रेणियों में दिखाई देता है, जिनमें फिबोनाची श्रेणी भी शामिल है, जहां प्रत्येक पद पिछले दो पदों के योग के बराबर होता है। जैसे जैसे फिबोनाची श्रेणी के पद बढ़ते हैं, क्रमिक पदों का अनुपात फाई के समीप पहुंचता जाता है।
पद शाला 16:18 में हम गणितीय फाई 1.618 पाते हैं। यीशु वो परमेश्वर जो सब कुछ अपनी ही इच्छा की युक्ति के अनुसार कार्यान्वित करता है, ने अपनी इस पहचान की मुहर पालमोनी अर्थात अद्भुत संख्या या गूढ़ बातों का गणन ना करता उस भविष्य सूचक भूगोल में स्थापित करने का निश्चय किया, जो अंतिम दिनों में नरक के फाटकों के विरुद्ध उसकी कलीसिया के युद्ध स्थल की पहचान कराता है। उस भविष्य सूचक युद्ध स्थल पर संख्याओं पर अपने नियंत्रण के द्वारा उसने 144,000 को पतरस के द्वारा निरूपित किया, जिसका नाम शमौन से बदलकर पतरस कर दिया गया था। शमौन अर्थात वो जो कबूतर का संदेश सुनता है, और इस प्रकार 144,000 को अपने अंतिम दिनों की वाचा प्रजा के रूप में चिह्नित किया। जिस चट्टान को उन्हीं ने अपनी कलीसिया बनाने के लिए चुना, वही आधारशिला है। लैव व्यवस्था 26:7 की नींव और मुख्य कोने का पत्थर, क्योंकि ऐसी कोई सच्ची नींव नहीं जो मसीह न हो। मसीह के बपतिस्मा से जब शिमोन ने कबूतर का संदेश सू न मृत सागर के क्रूस तक 1260 दिनों तक प्रतिदिन दो बार प्रातः और संध्या का बलिदान होता रहा, केवल उन 1260 दिनों के अंतिम दिन को छोड़कर, क्योंकि उस दिन संध्या का बलिदान याजक से छूट गया और क्रूस पर मसीह 2520वें अर्पण के रूप में मरे।
सब तरफ आतंक और भ्रम छाया है। याजक बलि पशु को मारने ही वाला है, पर उसके शिथिल हाथ से छुरी छूटकर गिर जाती है और भेड़ का बच्चा बच निकलता है। परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु में पूर्वरूप का प्रतिरूप से मिलन हो गया है। महान बलिदान हो चुका है। पवित्रतम स्थान में प्रवेश का मार्ग खोल दिया गया है। सबके लिए एक नया और जीवित मार्ग तैयार कर दिया गया है। अब पापी और शोकाकुल मनुष्यता को महायाजक के आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रही। युगों की अभिलाषा सत्सो पछाई।
जिस चट्टान पर वो अपनी कलीसिया बनाएगा वो वही आधारशिला है जिसे निर्माताओं ने ठुकरा दी। उसकी संख्या 2520 है। एक छोटे से पद में मसीह स्वयं को सब बातों के स्वामी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तब वे दानियेल के 11वें करना के पद 13 से 15 में खड़े होकर बोलते हैं,
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती 7:7।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
गुप्त बातें हमारे प्रभु परमेश्वर की हैं, परंतु जो बातें प्रकट की गई हैं वे हम और हमारी संतान की सदा के लिए हैं। व्यवस्था विवरण 29:87। सृष्टि का कार्य परमेश्वर ने किस प्रकार किया ये उसने मनुष्यों के सामने कभी प्रकट नहीं किया। मानवीय विज्ञान परम प्रधान के रहस्यों को खोज नहीं सकता। उसकी सृजनात्मक शक्ति उसके अस्तित्व जितनी ही अगम्य है। परमेश्वर ने विज्ञान और कला दोनों में संसार पर प्रकाश की बाढ़ उंडेलने की अनुमति दी है, परंतु जब तथाकथित वैज्ञानिक इन विषयों पर केवल मानवीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो वे निश्चय ही गलत निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। यदि हमारी परिकल्पनाएं पवित्र शास्त्रों में पाए गए तथ्यों का विरोध न करें तो परमेश्वर के वचन ने जो प्रकट किया है उससे आगे अनुमान लगाना निर्दोष हो सकता है। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर उनकी सृष्टि के कार्यों का स्पष्टीकरण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर खोजते हैं वे किसी अज्ञात समुद्र में बिना नक्शे और कंपास के भटक रहे हैं। सबसे महान मस्तिष्क भी यदि अपने अनुसंधान में परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शित न हो विज्ञान और दैवी प्रकाशना के संबंधों का पता लगाने के प्रयत्न में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता और उनकी कृतियां उनकी समझ से इतने परे हैं कि वे उन्हें प्राकृतिक नियमों से समझा नहीं पाते। इसलिए वे बाइबल के इतिहास को अविश्वसनीय मानते हैं। जो लोग पुराने और नए नियम के अभिलेखों की विश्वसनीयता पर संदेह करते हैं वे एक कदम और आगे बढ़कर परमेश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह करने लगेंगे, और तब अपना लंगर खो देने पर वे अविश्वास की चट्टानों से टकराते हुए इधर उधर भटकते रह जाते हैं। इन व्यक्तियों ने आस्था की सरलता खो दी है। परमेश्वर के पवित्र वचन के दिव्य अधिकार में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बाइबल को मनुष्यों की वैज्ञानिक धारणाओं की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। मानवीय ज्ञान एक अविश्वसनीय मार्गदर्शक है। जो संशयवादी मात्र छिद्रान्वेषण के लिए बाइबल पढ़ते हैं वे विज्ञान या ईश्वरीय प्रकाशन में से किसी की भी अपूर्ण समझ के कारण इनके बीच विरोधाभास खोज लेने का दावा कर सकते हैं, परंतु सही ढंग से समझने पर वे पूर्ण सामंजस्य में हैं। मूसा ने परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन में लिखा, और भूविज्ञान का कोई सही सिद्धांत कभी ऐसी खोजों का दावा नहीं करेगा जिन्हें उनके कथनों के साथ सामंजस्य में न लाया जा सके। समस्त सत्य चाहे प्रकृति में हो या ईश्वरीय प्रकाशन में अपनी सभी अभिव्यक्तियों में अपने साथ सुसंगत होता है। परमेश्वर के वचन में अनेक ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जिनका उत्तर सबसे गहन विद्वान भी कभी नहीं दे सकते। इन विषयों की ओर हमारा ध्यान इसलिए आकर्षित किया जाता है कि ये दिखाया जा सके कि दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुओं में भी कितना कुछ ऐसा है जिसे मानव की सीमित बुद्धि अपनी सारी शेखी बखारी बुद्धिमत्ता के साथ भी कभी पूरी तरह नहीं समझ सकती। फिर भी वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि वे परमेश्वर की बुद्धि को समझ सकते हैं, जो कुछ उसने किया है या कर सकता है। ये धारणा व्यापक रूप से प्रचलित है कि वो अपने ही नियमों से सीमित है। लोग या तो उसके अस्तित्व का इनकार करते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं या फिर हर बात को समझाने की सोचते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के हृदय पर उसकी आत्मा के कार्य को भी, और वे अब उसके नाम का आदर नहीं करते, न उसकी शक्ति से डरते हैं। वे अलौकिक में विश्वास नहीं करते। वे न तो परमेश्वर के नियमों को समझते हैं न ही उनके माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करने की उसकी अनंत शक्ति को। सामान्य उपयोग में प्रकृति के नियम की संज्ञा में वही बातें आती हैं जो मनुष्यों ने भौतिक संसार को संचालित करने वाले नियमों के संबंध में खोजी हैं, पर उनका ज्ञान कितना सीमित है और वो क्षेत्र कितना विशाल है जिसमें सृष्टिकर्ता अपने ही नियमों के साथ सामंजस्य में कार्य कर सकता है और फिर भी सीमित प्राणियों की समझ से सर्वथा परे। कई लोग ये सिखाते हैं कि पदार्थ में जीवन शक्ति निहित है, कि पदार्थ को कुछ गुण प्रदान किए गए हैं और फिर उसे अपनी अंतर्निहित ऊर्जा के द्वारा कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये कि प्रकृति के कार्य निश्चित नियमों के अनुरूप संचालित होते हैं जिनमें स्वयं परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मिथ्या विज्ञान है और ये परमेश्वर के वचन द्वारा समर्थित नहीं है। प्रकृति अपने सृष्टिकर्ता की सेविका है। परमेश्वर अपने नियमों को निरस्त नहीं करता और न ही उनके विपरीत कार्य करता है, परंतु वो निरंतर उन्हें अपने साधनों के रूप में उपयोग करता है। प्रकृति एक बुद्धिमत्ता, एक उपस्थिति, एक सक्रिय ऊर्जा की गवाही देती है जो उसके नियमों में और उनके माध्यम से कार्य करती है। प्रकृति में पिता और पुत्र का निरंतर कार्य चलता रहता है। मसीह कहते हैं, मेरा पिता अब तक कार्य करता आया है और मैं भी कार्य करता हूँ। यूहन्ना 5:17। लेवियों ने नहेमाया में वर्णित अपने भजन में गाया, तू हाँ तू ही अकेला प्रभु है, तूने आकाश, आकाशों का आकाश, उनके सारे गण सहित पृथ्वी और उसमें जो कुछ है बनाया है, और तू उन सबका पालन करता है। नहेमाया 9:6। इस संसार के विषय में परमेश्वर का सृष्टि कार्य पूरा हो चुका है, क्योंकि जगत की स्थापना से ही काम पूरे हो गए थे। इब्रानियों 4:3। परंतु अपनी सृष्टि की वस्तुओं को संभाले रखने में उसकी शक्ति अब भी कार्यरत है। ये इसलिए नहीं है कि जो यंत्र एक बार गति में लगा दिया गया वो अपनी अंतर्निहित शक्ति से स्वयं चलता रहता है, कि नाड़ी धड़कती रहती है और श्वास पर श्वास आती जाती है, वरन प्रत्येक श्वास, हृदय की प्रत्येक धड़कन उस सर्वव्यापी देखभाल का प्रमाण है जिसमें हम जीते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। प्रेरितों के काम 17:28 ये अंतर्निहित शक्ति के कारण नहीं है कि वर्ष दर वर्ष पृथ्वी अपनी उपज देती है और सूर्य के चारों ओर अपनी गति बनाए रखती है। परमेश्वर का हाथ ही ग्रहों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें आकाश में उनकी सुव्यवस्थित गति में उनके स्थानों पर बनाए रखता है। वो उनकी सेना को गिन गिनकर बाहर निकालता है। वो अपनी महान शक्ति के कारण उन सबको नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि उसकी पराक्रम शक्ति प्रबल है, उनमें से एक भी चूकता नहीं। यशाया 40:26। उसी की शक्ति से वनस्पति फलती फूलती है, पत्ते निकलते हैं और फूल खिलते हैं। वही पर्वतों पर घास उगाता है, भजन 17:105 बनाता है, और उसी के द्वारा घाटियां उपजाऊ बनती हैं। वन के सब पशु अपना भोजन परमेश्वर से मांगते हैं, और सबसे छोटे कीट से लेकर मनुष्य तक प्रत्येक जीव प्रतिदिन उसकी ईश्वरीय व्यवस्थापूर्ण देखभाल पर निर्भर है। भजनकार के सुंदर शब्दों में ये सब तेरी बाट जोते हैं, तो जो उन्हें देता है वे उसे बटोर लेते हैं, तू अपना हाथ खोलता है, वे भलाई से तृप्त हो जाते हैं। भजन 105:20, 21, 27, 28। उसका वचन तत्वों को नियंत्रित करता है। वो आकाश को बादलों से ढांप देता है और पृथ्वी के लिए वर्षा की तैयारी करता है। वह ऊन के समान हिम देता है, वह पाले को राख के समान बिखेरता है। भजन 144:16। जब वो अपनी वाणी उच्चारित करता है तो आकाश में बहुत सा जल उमड़ पड़ता है, वह पृथ्वी के छोरों से वाष्पों को ऊपर उठाता है, वह वर्षा के साथ बिजली बनाता है और अपनी भंडार गृहों से पवन निकालता है। यिर्मयाह 10:13। ईश्वर सब कुछ का आधार है। समस्त सच्चा विज्ञान उनकी कृतियों के साथ सामंजस्य में होता है। समस्त सच्ची शिक्षा उनके शासन के प्रति आज्ञाकारिता की ओर ले जाती है। विज्ञान हमारी दृष्टि के लिए नए आश्चर्य खोलता है। वो ऊंचाइयों तक उड़ान भरता है और नई गहराइयों का अन्वेषण करता है, परंतु अपने अनुसंधान से वो ऐसा कुछ नहीं लाता जो दैवीय प्रकाशन से टकराता हो। अज्ञान विज्ञान का सहारा लेकर ईश्वर के बारे में मिथ्या दृष्टिकोणों का समर्थन करने का प्रयास कर सकता है, किंतु प्रकृति की पुस्तक और लिखित वचन एक आसाघों पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार हम सृष्टिकर्ता की आराधना करने और उनके वचन पर बुद्धि संगत विश्वास रखने के लिए प्रेरित होते हैं। पितृपुरुष और भविष्यद्वक्ता 110 और 115।